ये तीन प्रकार के शरीर हो गए। एक है स्थूल शरीर माने हमारे या बाहर का शरीर, इसके भीतर का वह मन वाला शरीर जिसको हमने सूक्ष्म शरीर कहा, और उसके भीतर में कारण शरीर। क्यों भाई कारण शरीर की आवश्यकता क्यों पड़ी? किसी ने देखा कितना वैज्ञानिक चिंतन हिंदू धर्म में, कहा कि देखो यह जो स्थूल शरीर है यह तो स्थूल जड़ से बना हुआ है, और यह जो सूक्ष्म शरीर है वह सूक्ष्म जड़ से बना हुआ है। क्या मतलब? कि जड़ के ये दो रूप हो गए, एक रूप को कहा स्थूल जड़, दूसरे रूप को कहा सूक्ष्म जड़। तो सूक्ष्म और स्थूल जड़ इन दोनों का अंतर क्या है? कैसे तुम अंतर करोगे? अरे यह जो स्थूल जड़ है वह आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता, आत्मा की प्राणवत्ता को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता, पर यह जो सूक्ष्म जड़ है वह आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखता है। यह दोनों का अंतर है कि जड़ के दो प्रकार, स्थूल जड़ वह है जिसमें आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित करने की क्षमता नहीं, और सूक्ष्म जड़ वह है जिसमें आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित करने की क्षमता है। जैसे ढेला और पत्थर है, ढेला और पत्थर प्रकाश को प्रतिबिंबित नहीं कर सकता, पर कांच है, कांच प्रकाश को प्रतिबिंबित कर सकता है। तो जैसे जड़ के ये दो अंतर हो गए, एक देखते हैं एक ढेला है, पत्थर है, एक लकड़ी है, तो लकड़ी प्रकाश को प्रतिफलित और या प्रतिबिंबित नहीं कर पाती, कांच कर पाता है। दोनों में अंतर हो गया ना। इसी प्रकार यह जो हमारा स्थूल जड़ है शरीर, या आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित नहीं कर पाता, पर वह जो सूक्ष्म जड़ है जिसको हमने मन कहा, सूक्ष्म शरीर कहा, वह आत्मा के चैतन्य को प्रतिबिंबित करने की क्षमता रखता है। और जब हम उसका शोधन करते हैं इस मन का, एक दिन ऐसा आता है जब मन इतना सूक्ष्म हो जाता है कि जैसा आत्म तत्व है वैसा ही प्रतिबिंबित कर देता है। उसी को आत्मज्ञान की अवस्था कहते हैं, जैसा मैं पहले कह चुका हूं। तो अब यह कारण शरीर क्या है? ठीक है कि आपने बता दिया कि कारण शरीर, सूक्ष्म शरीर, यह सब सूक्ष्म जड़ से बने हैं, पर आपने एक सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर दो का अंतर किया। तो कहा भी बता दें, तो यह है स्थूल शरीर, इसके अंदर में है वह सूक्ष्म शरीर मन, जो प्रारब्ध के द्वारा तैयार होता है, और बहुत से संस्कार बाकी रह गए। ये संस्कार कहां रहेंगे? तो ये संस्कार जहां पर रहते हैं उसको कारण शरीर कहा जाता है, वह संचित संस्कार का कोष। अब ऐसा समझ लीजिए कि जो हमारा कारण शरीर है वह संचित संस्कार का कोष है, जो हमारा सूक्ष्म शरीर है वह प्रारब्ध संस्कार का कोष है, और जो हमारा स्थूल शरीर है वह क्रियमान संस्कार का आधार है। इसे हम क्रियमान कहते हैं कि प्रारब्ध जिस समय नया शरीर ग्रहण करा देता है, उस समय जब प्रारब्ध फलित होने लगते हैं, जिस समय क्रियाएं प्रारब्ध के अनुसार होने लगती हैं, उसको हम क्रियमान कहते हैं। इस जीवन में जो हम कर रहे हैं ना कर्म, यह क्रियमान है जिनके द्वारा संस्कार होता है। यह बड़ी विचित्र संबंध की बात है कि एक ओर हम जो क्रिया करते हैं, हम कहेंगे कि यह जो संस्कार हमें प्राप्त हुए हैं क्रिया करने के, पूर्व जन्म के कर्मों के फलस्वरूप हमें ये संस्कार प्राप्त हुए हैं और हम कर्म कर रहे हैं, और यहां जो हम कर्म कर रहे हैं ये हमारे अगले जन्म के संस्कारों को निश्चित करते हैं, ऐसा यह विचित्र संबंध है। तो क्या बिल्कुल वैसे ही कि हम बिल्कुल बंद करके जैसा हमने कर्म किया बिल्कुल कर्मों का संस्कार वैसा ही बना और ये संस्कार वैसे ही अगले कर्म को नियोजित करेंगे? ऐसी बात नहीं है। इस बीच में बहुत सा कर्म स्वातंत्र हमें मिला हुआ है। भाई हमने पहले समझाया एकदम बंधे हुए नहीं है, मानो इस कर्म की परंपरा में कोई जड़ता नहीं है। इसमें मनुष्य कर्म को करने के लिए स्वतंत्र है, इच्छा स्वातंत्र को व्यक्त करने में वह स्वतंत्र है, पुरुषार्थ करने में स्वतंत्र है। संस्कार मिला, एक उसको एक घेरा मिल गया। पुराने हमारे जो कर्म के संस्कार हैं अगले पिछले जीवन के, उसके हमसे घेरा मिल गया है। अब उसमें हम स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए, और स्वतंत्र हैं कर्म करने के लिए, इसलिए हम अपने अगले जन्म को बेहतर बना सकते हैं। यदि मनुष्य बिल्कुल कर्मों से बंधा हुआ होता तब तो कर्म वैसे ही होते, जीवन वैसा ही होता। हम अपने को बेहतर बना ही नहीं सकते जैसा हमारा पिछला जन्म था। पिछले जन्म में हमने जो किया वह उसके पिछले जन्म का परिणाम है, और यह जो अभी जीवन में हूं पिछले जन्म का परिणाम है, मेरा अगला जन्म जो बनेगा इसका परिणाम होगा। अगर सभी जगह मैं बना हूं तब तो कहीं पर कोई परिवर्तन की आशा नहीं, किसी प्रकार उसमें संस्कार की आशा नहीं, उसमें जिसे हम कहेंगे कि उसमें किसी भी प्रकार हम अधिक अच्छा नहीं बना सकते, बेहतर उसे नहीं कर सकते। तो वह कर्म का सिद्धांत नहीं मानते। तो पुनर्जन्म के साथ जो कर्मवाद चलता है वह यह, हम कर्म करने में स्वतंत्र हैं। ठीक है, एक घेरा हमें मिला है, पर उस घेरे के भीतर में हम कर्म करने के लिए स्वतंत्र हैं, और उस घेरे की स्वतंत्रता का सदुपयोग यदि हम करें, हम अपने कर्मों को अच्छा बना सकते हैं। तो यह जिसे हम कहेंगे कि यह प्रारब्ध, संचित और क्रियमान का भेद है। तो जब मृत्यु होती है तो जन्म जन्मांतर के संस्कार आकर के खड़े हो गए, उसमें प्रबलतम संस्कार अलग हो जाते हैं, प्रारब्ध का निर्माण कर देते हैं, बचे हुए संस्कार जो हैं वे संचित कहलाते हैं। तो जिस शरीर में वे रहते हैं वह कारण शरीर, और यह सूक्ष्म शरीर क्या है, सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर इसी प्रकार चलता है। सूक्ष्म शरीर कारण शरीर दोनों एक साथ निकलते हैं, शरीर से निकलते हैं। मृत्यु के समय यह तो पड़ा रह जाता है, यह जो हमारा यह स्थूल शरीर है यहीं पर पड़ा रह जाता है, परंतु ये दोनों शरीर निकल जाते हैं। सूक्ष्म शरीर और कारण शरीर ये शरीर से निकल करके चले गए, अब चले तो गए, ठीक है, प्रारब्ध के अनुसार वह हमें नया जीवन मिला। इसका क्या मतलब कि प्रारब्ध बना, मैंने कहा कि जैसे मेरा जो सूक्ष्म शरीर है, लिंग शरीर है, उसका आकार कैसा है, ऐसे ही है, पर यह स्थूल आकार है, वह सूक्ष्म आकार है। जैसे हम जैसे समझ लीजिए कि एक आकार ज्योति से बनाया जाए, उसमें कोई आकार तो नहीं होता, पर ज्योति का एक आकार सरीखा दिखाई देता है, एक आकार सरीखा दिखाई देता है ज्योति का आकार। तो ठीक वह जो सूक्ष्म जड़ है जिसे हम कहते हैं सूक्ष्म शरीर, उसकी आकृति तो इसी के अनुरूप होती है। योगी उसे देख लेते हैं, योगी देख करके अरे 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 ये जो सूक्ष्म शरीर है आत्मानंद का है, वो पहचान लेते, दिखाई देता है उनको, वो समझ लेते हैं यदि मैं योगी बन जाऊं तो मैं आपके सूक्ष्म शरीर को भी देख सकता हूं। पतंजलि अपने योग सूत्रों में लिखते हैं कि देख लेता है, वह जो योगी होता है संयम जिस समय करता है तो वह सूक्ष्म शरीर को देख लेता है, या जैसा हमने कहा कि जिस समय व्यक्ति की मृत्यु हो गई तो सूक्ष्म शरीर को योगी लोग देख सकते हैं। सूक्ष्म शरीर है। आता है, कथा आती है, वहां पर कुसुम सरोवर गिरिराज जी और राधा कुंड श्याम कुंड जाने के रास्ते के बीच में कुसुम सरोवर स्थान है, वहां पर वृंदावन ब्रज क्षेत्र में जब जाते हैं हम गिरिराज जी से गोवर्धन से, तो गोवर्धन जी से श्याम कुंड राधा कुंड की ओर जाते हैं तो बाएं हाथ में वह कुसुम सरोवर पड़ता है, बंधा हुआ है, वहां पर छत्री है, वहां पर किसी की स्मृति चिन्ह बने हुए हैं, वहां पर एक कमरा है, उस कमरे में स्वामी ब्रह्मानंद जी और स्वामी तुरियानंद जी रहते थे तपस्या करने के लिए। श्री रामकृष्ण के दोनों अंतरंग सन्यासी शिष्य स्वामी ब्रह्मानंद जी प्रथम अध्यक्ष बने रामकृष्ण मिशन के, दोनों वहां पर तपस्या करते थे और सुबह उठ जाते थे। तो एक दिन स्वामी तुरियानंद जी को गहरी नींद लगी, वह कमरा अभी भी है, वहां दोनों के चित्र टंगे हैं जिस कमरे में रह करके उन्होंने साधना की। तो एक दिन तुरियानंद जी को लगा कि गहरी नींद पड़ी थी तो अचानक फिर उठा दिया गया उनको, तुरियानंद जी को, तो उन्होंने सोचा कि ब्रह्मानंद जी ने बाहर जाते जाते मुझे उठा दिया, क्योंकि उन्होंने देखा तो ब्रह्मानंद जी कमरे में नहीं थे। तो जिस समय ब्रह्मानंद जी लौट करके आए तो तुरियानंद जी ने पूछा कि तुमने मुझे उठाया, आज तो गहरी नींद मुझे लग गई थी। नहीं, मैंने तो तुम्हें नहीं उठाया। नहीं, मुझे किसी ने उठाया तो तुमने नहीं उठाया तो और कौन उठाएगा। तो ब्रह्मानंद जी बैठे, उन्होंने इधर उधर देखा तो उन्होंने देखा कि एक सूक्ष्म शरीरधारी वहां पर विद्यमान है, और कहा तुरियानंद जी से, हरि उनका नाम था पहले का, देखो देखो हरि, देखो देखो, उन्होंने उठाया, एक सूक्ष्म शरीर में थे, मानो जाप करने की मुद्रा में थे तो उन्होंने उठाया। तो फिर ब्रह्मानंद जी ने कहा कि ऐसे भी लोग होते हैं जो मोक्ष की कामना नहीं करते, जो ऐसा कहते हैं ठीक है मृत्यु के उपरांत में लोगों की सेवा करता रहूं, तो ऐसे जो साधक हैं तो साधक की सेवा करते हैं, साधक के जीवन में कोई बाधा आ जाती तो उस बाधा को दूर करने का प्रयास करते हैं। तो ब्रह्मानंद जी ने तुरियानंद जी को बताया, उन्होंने वह सूक्ष्म शरीर देख लिया। तो मतलब यह है कि सूक्ष्म शरीर को देखा जा सकता है योगियों के द्वारा। अच्छा, जिस समय मृत्यु को व्यक्ति प्राप्त होता है तो सारे संस्कार आ गए, और जो प्रबलतम संस्कार है वे प्रारब्ध के रूप में मानो अलग हो गए। अब यह जो अलग हो गए तो यह जो प्रारब्ध जो हमारा है, इस प्रारब्ध की तीव्रता के द्वारा उस मन का संस्कार होता है। वह जो सूक्ष्म शरीर है ना, जैसे अभी मेरा जो सूक्ष्म शरीर उसका आकार आत्मानंद का, और मेरी मृत्यु इस क्षण होती है तो वह जो मेरा एक समझिए प्रारब्ध बनता है, तो प्रारब्ध क्या करेगा, वह प्रारब्ध अपने अनुसार मेरे सूक्ष्म शरीर को रूप देगा। रूप देगा। यदि मैंने जीवन में बहुत ही गर्हित कर्म किए हैं, मैंने बड़ा पाप किया है, तो यदि मेरी वृत्ति श्वान की नहीं रही है, कुत्ते की समान रही है, तो जिस समय मैं मरूंगा तो उस समय जो प्रारब्ध बनेगा वह प्रारब्ध मेरे सूक्ष्म शरीर को कुत्ते का आकार दे देगा। और जो उसे कुत्ते का आकार मिला तो वह जो मेरा सूक्ष्म शरीर अभी तक जो इस रूप में था कुत्ते के रूप में हुआ, वह कारण शरीर को लेकर के कुत्ते के गर्भ में प्रविष्ट हो जाए, यह उसकी प्रक्रिया है। यदि मैंने अच्छे कर्म किए हैं, मनुष्य योनि में मुझे जाना है, तो वह जो प्रारब्ध शरीर है वह मानव निर्मित करता है, वह आकार को निश्चित करता है, और वह कारण शरीर के साथ निकल करके दो बातें होती हैं, या तो तुरंत गर्भ में चला जाता है या फिर पंचाग्नि क्रम से वह गर्भ में आता है। भगवान शंकराचार्य कहते हैं कि पंचाग्नि क्रम से इस जीव का जन्म होता है, वह उपनिषद की विद्या है, पंचाग्नि क्रम के नाम से जो विख्यात है। तो उसका तात्पर्य क्या है? उसका तात्पर्य यही पंचाग्नि क्रम का, उसको देखने का प्रयास लंबा है, उसको हम देखेंगे बाद में, पर इसका तात्पर्य यही है अभी यही बताने का कि यह जो हमारा प्रारब्ध होता है वही मुझे अगला जन्म प्रदान करता है, वह निश्चित करता है कि मुझे अगले जन्म में किस योनि में प्रवेश करना है, वह मेरे सूक्ष्म शरीर को वह आकार दे देता है। अगर देव योनि में जाना है तो वह सूक्ष्म शरीर को देव योनि की ओर प्रेरित कर देता है। इस सूक्ष्म शरीर के साथ कारण शरीर दोनों साथ के साथ चलते हैं, ये दोनों चलते हैं। तो अभी हमने देखा फिर यह क्या है कि यह जो है हमारा जो जिसको हम कहेंगे कि पुनर्जन्म का सिद्धांत, वह क्या स्वीकार करता है कि यह शरीर है और उसके अंदर में मन है, मन के दो रूप हो गए, एक सूक्ष्म शरीर और एक कारण शरीर, इन सबको मिलाकर के मनोयंत्र कहा जाता है। कारण शरीर और सूक्ष्म शरीर इन दोनों को मिलाकर के हमारा मनोयंत्र हुआ और इन दोनों को छोड़कर के हम आत्म तत्व को मानते हैं। तो पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है इस आत्म तत्व पर खड़ा है। क्या मतलब? कि हम यह मानते हैं कि शरीर में भी परिवर्तन है और मन में भी परिवर्तन है, पर इन दोनों परिवर्तनों के पीछे परिवर्तनों का अनुभव करने वाला एक तत्व है जिसको हमने आत्मा कहा है। जैसे हम परिवर्तन को देखते हैं, नदी की जलधारा में परिवर्तन हो रहा है सतत, कौन देखता है? मैं कब देखता हूं? जिस समय मैं नदी के प्रवाह के साथ बहता हूं उस समय मुझे इसका बोध नहीं होता, पर जब मैं किनारे पर खड़ा हूं तो मैं देखता हूं कि हां जलधारा बह रही है। मैं किनारे पर जब खड़ा होता हूं तो जलधारा बहती दिखाई देती है। जैसे आपने देखा होगा दो पांतों पर जिस समय रेल जाती है बिल्कुल समान गति से, एक ही समान, तो हमें क्या लगता है? लगता है कि हमारी कोई गति ही नहीं हो रही है, मानो हम स्थिर हैं। हमें गति कब दिखाई देती है? जब जमीन की ओर देखते हैं, आसमान की ओर देखते हैं, खिड़की से बाहर वृक्ष की ओर देखते हैं, तब लगता है कि नहीं हमारी ट्रेन चल रही है। और दो अगर ट्रेन समान रूप से ऐसी चलती रहे और हम देखें उस ट्रेन को, ऐसा लगता है कि ट्रेन हमारी चली नहीं रही, खड़ी है बिल्कुल। यह गति का भान कब होता है? जब हम गति से भिन्न होकर के खड़े होते हैं तब हमें गति का भान होता है। तो इसी प्रकार यह जो शरीर का परिवर्तन यह तो दिखाई देता है, मन का परिवर्तन यह भी हमें दिखाई देता है। मन अभी मेरा अच्छा है, थोड़ी देर में बुरा हो जाता है, तो मन का परिवर्तन भी, विचारों का परिवर्तन भी मुझे दिखाई देता है। तो शरीर और मन के परिवर्तन का अनुभव करने वाला कौन है, यह प्रश्न उठा। ठीक है, परिवर्तन को देखने वाला कोई ऐसा तो होगा जिसमें परिवर्तन नहीं है, जो शरीर और मन से भिन्न है वही परिवर्तन को देख सकता है, जो शरीर के साथ एकाकार है वह परिवर्तन नहीं समझ सकेगा, जो मन के साथ एकाकार है वह परिवर्तन को नहीं समझ सकेगा, पर वह परिवर्तन को समझ सकता है जो शरीर और मन इन दोनों से भिन्न है। तो वह जो भिन्न तत्व है उसको हम कहते हैं आत्मा, और यह बिल्कुल इसको हम कहेंगे वह अपरिवर्तनशील है, इसीलिए शरीर और मन के परिवर्तनों को देख लेता है। जैसे हम देखते हैं सिनेमा में बाहर एक स्थिर पर्दा है सामने की ओर, पीछे में फिल्में जोरों से दौड़ रही हैं, और यह जो पर्दा स्थिर खड़ा है, तो पर्दा स्थिर खड़ा है इसके लिए एक संबद्धता आ जाती है, फिल्म की पूरी कहानी हमें समझ में आती है। और यह फिल्म की पूरी कहानी अगर फिल्म को देखें तो एक एक टुकड़े को लेकर के देखें, कोई संबद्धता नहीं। एक एक फिल्म के छोटे टुकड़े को देखें, किसी का हाथ इतना है, दूसरी फिल्म में इतना है, तीसरी में इतना है, चौथी में इतना है, पांचवी में इतना है, ऐसे देखते जाए तो ऐसा, और जब यही फिल्म भागती है तो हाथ वह ऐसा कर रहा है, मानो पूरी कहानी हमें दिखाई देती है। कब? जब वहां पर सामने का पर्दा स्थिर है तब। अगर पर्दे में भी हलचल होने लगे, जैसे बाहर जब सिनेमा दिखाते हैं तो बाहर पर्दे को ऐसी मान देते हैं और जब पर्दा हिलने लगता है तो सिनेमा ठीक दिखाई नहीं देता, कहानी ठीक दिखाई नहीं देती। अगर पर्दे में भी गति आ जाए तो कहानी ठीक दिखती नहीं है। और कहानी कब ठीक दिखती है? जब वह पर्दा स्थिर होता है। ठीक इसी प्रकार या जैसे फिल्म भाग रही है बहुत वेग से, या शरीर के हमारे कण भाग रहे हैं, मन के हमारे तंतु सतत भाग रहे हैं, पर भागते हुए भी जीवन की एक कहानी हमें दिखाई देती है, मनुष्य के जीवन की गाथा को हम पढ़ते हैं। कब? उस आत्मा रूपी स्थिर पर्दा रहने के कारण। वह यदि न होता तो आज से 20 साल पहले जो घटना घटी थी वह तो घट चुकी। फिर उस घटना को आज की दशा में संबद्ध करने वाला तत्व कौन सा है? मन तो बदल चुका, वह घटना घट चुकी, परंतु फिर भी विद्यमान है। इस विद्यमानता को प्रकट करने वाला, इस मनुष्य की गाथा को प्रकट करने वाला कौन है? वह स्थिर पर्दा है। अगर वह स्थिर पर्दा न हो आत्मा का तो ठीक कहानी ठीक आएगी नहीं। यह स्थिर पर्दा या आत्मतत्व तो मानना ही पड़ता है, यह आत्मतत्व है। अगर कोई कहे कि आप स्थिर अपरिवर्तनशील आत्मा को क्यों मानते हैं, आप ऐसा कह लीजिए कि ठीक है शरीर और मन का परिवर्तन, आपने रेलगाड़ी का उदाहरण दिया, समान गति से दोनों गाड़ियां चलती हों ऐसा लगता है कोई गति नहीं हो रही है, पर असमान गति से अगर गाड़ी चलने लगे, एक गाड़ी 10 मील की गति से और दूसरी गाड़ी 5 मील की गति से, तब तो गति का बोध होगा ना। तो ऐसे ही मान लीजिए कि आत्मा को आप अपरिवर्तनशील क्यों मानते हैं, ऐसा मान लीजिए कि मन के परिवर्तन की जो गति है और शरीर के परिवर्तन की जो गति है उससे भिन्न गति रखने वाला एक आत्मा नामक तत्व है, तो उसके कारण ये गतियां दिखाई देती है। तो फिर यही प्रश्न होगा कि फिर इस आत्मा की गति को समझने के लिए और आत्मा स्वीकार करना पड़ेगा, और उस आत्मा की गति को समझने के फिर और एक आत्मा, इसको कहते हैं वे तो रिग्रेस एड इन्फिनिटम, या तो फिर यह तो जिसको कहेंगे एक दोष है, यह न्याय शास्त्र में एक बहुत बड़ा दोष है। ऐसा नहीं कि जब एक ही आत्म तत्व को मान लेने से ये सारी विसंगतियां दूर हो जाती हैं, तो हमें इस एक आत्म तत्व को ही मान लेना चाहिए। तो यह आत्मा जिसमें किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं, और जिसमें परिवर्तन नहीं उसका विनाश भी नहीं, यह तो लॉजिक है ना। जिसमें कोई परिवर्तन नहीं उसका कोई विनाश भी नहीं, और जिसका कोई विनाश नहीं वह सर्वव्यापी होता है। विनाश किसका नहीं होता? उसी का विनाश नहीं होता जो सर्वव्यापी है। जो सर्वव्यापी नहीं है, जो सीमित है, उसका विनाश होता है। सीमित का विनाश होता है, अनंत का विनाश नहीं होता, असीम का विनाश नहीं होता। जब हमने यह कहा कि यह आत्मतत्व अपरिवर्तनशील है, इसका मतलब कि यह अविनाशी है। अपरिवर्तनशील वही हो सकता है जिसमें किसी प्रकार का विनाश ना हो। कि जैसे मेरा यह शरीर है, यह क्या अपरिवर्तनशील नहीं है? मेरी उंगली कट जाती है, वह खंडित हो जाती है, मेरा घुटना टूट जाता है, खंडित हो जाता है, इसमें विनाश दिखाई देता है, इसके परिवर्तन दिखाई देता है। जब कहते हैं कि उसमें कोई परिवर्तन नहीं है, इसका मतलब उसमें कोई विनाश भी नहीं है। और विनाश उसी का नहीं होगा जो सर्वव्यापी हो। अब यह जो आत्मा सर्वव्यापी तत्व है, तो मुर्दे के भीतर है या नहीं? कहते हैं कि आत्मा निकल गई, मनुष्य मरा और उसकी आत्मा निकल गई। आत्मा निकल गई? अगर आत्मा सर्वव्यापी है तो निकल करके कहां जाएगी? मुर्दे के भीतर में आत्मा नहीं है? यह प्रश्न उठता है। अब मुर्दा पड़ा है, लाश पड़ी है, उसके भीतर में आत्मा है कि नहीं? अगर हम कहते हैं कि आत्मा निकल गई, इसका मतलब है कि फिर आत्मा सर्वव्यापी नहीं है। और जब हम आत्मा को सर्वव्यापी मानते हैं, गीता ने उसे सर्वव्यापी कहा, उपनिषदों ने सर्वव्यापी कहा, हमारे सारे शास्त्र उसे सर्वव्यापी कहते हैं, तो उसके भीतर में भी आत्म तत्व है। यह तो मानना ही पड़ेगा कि लाश के भीतर में भी, मुर्दे के भीतर में भी आत्म तत्व है। तो आत्म तत्व है तो फिर क्या गया उसमें से, निकला क्या उस मुर्दे से, क्या निकला? यहां पर वह प्रश्न उपस्थित होता है। तो इस संदर्भ में बड़ी सुंदर बात यह हिंदू धर्म कहता है, वो क्या निकला जानते हो? वह निकला है जीवात्मा, आत्मा नहीं। उसको हम जीव कहते हैं, उसको हम जीवात्मा भी कहते हैं। जीवात्मा मुर्दे से निकलता है, आत्मा नहीं निकलती। आत्मा तो सर्वव्यापी है, वह कहां निकलेगी? तो आत्मा में और जीवात्मा में क्या अंतर है? शास्त्र कह रहे हैं हां हां अंतर है। आत्मा में और जीवात्मा में अंतर है, जीव और जीवात्मा में अंतर नहीं, हम जीवात्मा को ही जीव कह देते हैं, पर जीवात्मा में और आत्मा में अंतर है। क्या अंतर है? आत्मा में दो गुण है, एक को कहते हैं चैतन्य चेतनता और दूसरे को कहते हैं प्राणवत्ता। ये दो गुण आत्मा के भीतर में है, पर ये दो गुण उसके भीतर में प्रच्छन्न रहते हैं। कब प्रकट होते हैं? जहां मनोयंत्र वहां सामने आता है तो वहां पर ये दो गुण प्रकट हो जाते हैं। कैसे? समझाने के लिए स्थूल, ये जितने भी उदाहरण होंगे सब स्थूल होंगे, तो बात को समझाने के लिए अब समझिए कि यह जो विद्युत है, विद्युत तो है, विद्युत में प्रकाश है, यह जो प्रकाश है विद्युत में प्रच्छन्न है माने छिपा हुआ है। तो यह जो प्रच्छन्न प्रकाश है विद्युत में, विद्युत के भीतर बिजली के भीतर छिपा हुआ जो प्रकाश है, तो उसे प्रकट करने के लिए क्या करना पड़ता है? मुझे लट्टू लगाना पड़ता है, बल्ब लगाना पड़ता है या ट्यूब लगाना पड़ता है। तो ट्यूब लगाता हूं या लट्टू बल्ब लगाता हूं तो बिजली के भीतर में जो छिपा हुआ प्रकाश था वह प्रकट हो जाता है। ऐसे ये जो आत्म तत्व है इसके भीतर में ये दो गुण है, एक चेतनता का और दूसरा प्राणवत्ता का, और ये प्रच्छन्न रहते हैं आत्मा में। और जो ही कोई मनोयंत्र सामने आता है तो मनोयंत्र को पाकर के ये दोनों के दोनों गुण प्रकट हो जाते हैं। तो जहां पर भी मनोयंत्र होगा वहां पर चेतनता दिखाई देगी, वहां पर प्राणवत्ता दिखाई देगी, वहां पर स्पंदन दिखाई देगा। अमीबा से यह दिखाई देता है चेतनता और प्राणवत्ता का गुण। इसका मतलब कि अमीबा में भी वह मनोयंत्र है और मनोयंत्र धीरे 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 विकसित हो रहा है। जैसा हमने कहा माने निम्नतर योनि से उच्चतर योनि में जैसे जैसे यह प्रवाह जा रहा है मनोयंत्र विकसित हो रहा है। मनुष्य में आकर के वह विकसित होना त्वरित गति से शुरू करता है, मानो यह दिखाई देता है। और मनुष्य जिस समय मृत्यु को प्राप्त होता है तब क्या होता है? यह स्थूल शरीर तो उसका पड़ा है, पर उसका जो सूक्ष्म शरीर है वह कारण शरीर के साथ निकल करके चला जाता है। यह मनोयंत्र, इस सब को मिलाकर के मनोयंत्र कहते हैं, कि उसका यह जो सूक्ष्म शरीर है कारण शरीर है इस पूरे को मिलाकर के मनोयंत्र कहते हैं। वह मनोयंत्र निकल गया और जो ही मनोयंत्र निकल गया तो मुर्दे के भीतर में अब मनोयंत्र नहीं है, और नहीं होने के कारण आत्मा का जो गुण मनोयंत्र की उपस्थिति के कारण प्रकट दिखाई देता था, मनोयंत्र के अभाव में ये गुण प्रच्छन्न हो जाते हैं। प्रच्छन्न हो गए, दोनों छिप गए। आत्मा में जो चेतनता का गुण था, आत्मा के भीतर प्राणवत्ता का गुण था, जब तक मनोयंत्र था तब तक तो ये दोनों के दोनों दिखाई देते थे, इसीलिए वह मनुष्य चैतन्य युक्त दिखाई देता था, इसीलिए वह मनुष्य प्राणवान दिखाई देता था। पर जो ही उसके भीतर से मनोयंत्र निकल करके चला गया, त्यों ही मनोयंत्र के अभाव में आत्मा के दोनों गुणों का प्रकट होना बंद हो गया। इसीलिए मुर्दे के भीतर में आत्मा है तो, पर आत्मा का जो गुण है चैतन्य का गुण प्राणवत्ता का गुण मनोयंत्र के अभाव में दिखाई नहीं देता, पर उसमें आत्मा है मुर्दे में भी। पर वह जो निकल गया उसी को हम जीव कहते हैं, जीव निकल गया। तो जीव क्या है? जीव का तात्पर्य है यह सूर्य जो कारण शरीर पर सवारी करके जाता है, इसे हम जीव कहते हैं, यही जीवात्मा है। यह जीवात्मा निकल गया, अब जीवात्मा निकल गया तो उसका जो जन्म होता है जैसा कहा गया पंचाग्नि क्रम से उसका जन्म होता है। पंचाग्नि क्रम से हमने माना है पंच विद्या, पंचाग्नि विद्या। भगवान शंकराचार्य भाष्य करते हुए कहते हैं, बड़ी सुंदर बातें हैं, भाष्य करते हैं बृहदारण्यक उपनिषद में, वे कहते हैं और इसी प्रकार ब्रह्मसूत्र पर, पंचाग्नि विद्या का मतलब है यह पंच क्रम से। पंचाग्नि क्या है? पंच स्वर्ग पहला, फिर पर्जन्य दूसरा, तीसरा पृथ्वी, चौथा पुरुष और पांचवा स्त्री, ये पंचाग्नि है। वे ऐसा कहते हैं कि जिस समय यह जीव निकला माने निकलता है जीव यानी जीवात्मा, और यह आत्मा से बिल्कुल भिन्न है। यह जीवात्मा निकल करके जाता है, आत्मा नहीं निकलती है, आत्मा तो सर्वव्यापी है। तो यह जीवात्मा निकलता है और निकल करके कहां जाता है? वे कहते हैं वह स्वर्ग जाता है। स्वर्ग का मतलब चंद्रलोक, चंद्रमा मनस हो जाता, हम पढ़ते हैं ना ऋग्वेद में चंद्रमा मन, यह जो मन से वह उत्पन्न हुआ। चंद्रलोक का मतलब वह चंद्र नहीं जिसको हम देखते हैं, वह चंद्रलोक की जो कल्पना की गई है बड़ी सूक्ष्म कल्पना है, उसे उन्होंने एक जिसे हम क्या कहेंगे स्पंदन का, एक कहेंगे कि एक लोक, एक भिन्न भिन्न प्रकार के जहां पर स्पंदन है, तो यह जो जीव निकला है वह चला गया चंद्रलोक में, माने स्वर्ग में। सामान्य शब्दों में हम उसे स्वर्ग कहते हैं, स्वर्ग में चला गया। और वह जो जीव है वही है। और उसके बाद समय पाकर के जिस समय पर्जन्य होता है, वृष्टि होती है, तो दूसरी अग्नि में से गुजरता है, वह पृथ्वी पर आता है, या पृथ्वी तीसरी। और पृथ्वी में आकर के किसी वनस्पति में वह प्रविष्ट होता है, और कोई पुरुष उसका भक्षण करता है, तो वह जीव उसके भीतर में आ गया, और उसके भीतर में प्रविष्ट होकर के वह शुक्र के रूप में विद्यमान रहता है। और जब स्त्री के साथ उसका संयोग होता है, तो स्त्री का रज इस पुरुष के शुक्र के साथ मिलित होते हैं, और उसका वह जन्म होता है। अब जो आज का जीव शास्त्री है वह क्या कहता है, एक बार जो पुरुष और स्त्री का संयोग हुआ, लक्ष लक्ष उसमें शुक्राणु होते हैं, लक्ष लक्ष उसमें रज के कण होते हैं, पर क्या सभी के सभी फलित होते हैं? यदि सभी के सभी फलित होते तब तो फिर इस पृथ्वी में एक साल में ही मनुष्य रह ही नहीं पाता, इतनी आबादी हो जाती। मालूम नहीं कितने संयोगों के बाद कहीं पर लक्ष लक्ष रज कण में से एक रज कण लक्ष लक्ष शुक्र कणों में से एक के साथ मिलित होता है। क्यों मिलित होता है? अब यह तो विज्ञान नहीं बता सकता, यह तो खाली जैसे जूलियन हसले हैं, इतने बड़े वैज्ञानिक हैं, वे भी इसमें आकस्मिकता को देखते हैं। पर यह आकस्मिकता कह देना तो विचित्र बात है। एक ग्रंथ है उनका, व्हाट डेयर आई थिंक, जूलियन हसले। और जब यह देखते हैं, असल में यह हुआ कि उन्होंने समझाना चाहा कि मनुष्य मनुष्य में अंतर क्यों होता है। तो उन्होंने कहा कि यह जो आनुवंशिकता है, जिसको हेरिडिटरी ट्रांसमिशन कहते हैं, और वातावरण, ये दो कारण बताए कि वातावरण भिन्न मिल जाने से मनुष्य भिन्न हो जाते हैं, और फिर आनुवंशिक क्रम, आनुवंशिकता के संस्कार कि माता पिता से जो आए हैं तो इसके कारण अलग अलग हो जाते हैं। पर अब प्रश्न उठता है कि आनुवंशिकता और वातावरण के सिद्धांत के बल पर मनुष्य मनुष्य के पार्थक्य को कैसे समझाया जा सकता है? जैसे हम देखते हैं पिता और माता बहुत अच्छे हैं और संतान बहुत दुष्ट निकलती है, यह भी देखा गया। पिता माता सामान्य बुद्धि वाले हैं, पर यह जो संतान निकली है बड़ी विचक्षण मेधा है, ऐसे भी देखे गए। और पिता माता जैसे उनका मानसिक स्वास्थ्य ठीक है तो संतान पागल निकलती है, ये जीवन में सब देखे जाते हैं, अनुभव किए जाते हैं। तो आनुवंशिकता के बल पर हम समझाना चाहें कि यह जो पिता के संस्कार या माता के संस्कार ला करके यह जीव की भिन्नता साधित होती है, उसके बल पर तो नहीं समझाया जा सकता। यह जो प्रचंड मस्तिष्क वाला कोई प्रातिभ बुद्धि वाला होता है और मंद बुद्धि, प्रातिभ बुद्धि कहते हैं बहुत जिसका दिमाग बहुत सर्वश्रेष्ठ हो, बहुत जिसका इंटेलेक्ट बड़ा हो, और मंद बुद्धि जो पागल हो, क्यों निकलते हैं ये, कैसे निकलते हैं? इसको तो हेरिडिटरी ट्रांसमिशन के बल पर नहीं समझाया जा सकता, आनुवंशिकता के बल पर। अब यहां पर जब समझाने गए जूलियन हक्सले, तो व्हाट डेयर आई थिंक इसमें वे लिखते हैं, एग एंड स्पर्म कैरी द डेस्टिनी ऑफ जनरेशन। एग कहते हैं रज कण को, स्त्री के कण को, स्पर्म कहते हैं मनुष्य के कण को। एग एंड स्पर्म कैरी द डेस्टिनी ऑफ द जनरेशन, द एग रियलाइजेज वन चांस कॉम्बिनेशन आउट ऑफ एन इन्फिनिटी ऑफ पॉसिबिलिटीज, एंड इट इज कन्फ्रंटेड विद मिलियंस ऑफ पेयर्स ऑफ स्पर्म्स, ईच वन एक्चुअली डिफरेंट इन द कॉम्बिनेशन ऑफ कार्ड्स विच इट होल्ड्स। कितने लक्ष्य लक्ष्य रहते हैं। देन कम्स द फाइनल मोमेंट इन द ड्रामा, द मैरिज ऑफ एग विद द स्पर्म टू प्रोड्यूस द बिगिनिंग ऑफ ए लार्ज इंडिविजुअल, हियर टू इट सीम्स टू बी एंटायरली ए मैटर ऑफ चांस। यह भी आकस्मिकता है उनकी दृष्टि में। विच पर्टिकुलर यूनियन ऑफ ऑल द मिलियंस ऑफ पॉसिबल यूनियंस शैल बी कंजुमेटेड। अब ये चांस पर है कि कितने लक्ष लक्ष रज कण हैं, लक्ष लक्ष शुक्र कण हैं, इन दोनों में से कोई एक निकल करके मिलकर मिलकर सभी रहे हैं, आपस में मिल रहे हैं, पर इनमें से एक दो एक ऐसे जोड़े मिलेंगे और फर्टिलाइज हो जाते हैं, किसी जीव को जन्म दे देते हैं। यह कैसे होता है? चांस पर होता है। मिलियंस ऑफ पॉसिबल यूनियन शैल बी कंजुमेटेड, वन माइट हैव प्रोड्यूस्ड ए जीनियस, अनदर ए मरोन एंड सो ऑन। एक मिल गए तो एक जीनियस प्रतिभावान व्यक्ति पैदा हो गया, एक मिल गए तो मोरन पैदा हुआ, मैंने मंद बुद्धि, माने जिसको हम कहते हैं कि इसकी बुद्धि का विकास नहीं हुआ, ऐसी मंद बुद्धि वाला पैदा हो गया। यह क्यों होता है? वो कहते चांस है। हम लोग चांस नहीं मानते, गर्म से चांस नहीं कहता, हम कहते हैं कि माता पिता बच्चे को पैदा करते हैं, या विज्ञान की भाषा में वे पैदा कर रहे हैं। पर यह पुनर्जन्म का सिद्धांत और कर्म का सिद्धांत क्या कहते, वे पैदा नहीं कर रहे हैं, बल्कि यह जीव ही अपने माता पिता खोजता है। ये जो निश्चित हुआ है वह जीव अपना माता पिता निश्चित करता है। इसलिए हम गीता में पढ़ते हैं यह जीव जहां पर उसके अनुरूप प्रारब्ध को फलित होने के अनुरूप माता पिता और वातावरण प्राप्त होंगे वहां वह चला जाता है।